कृष्ण की ही पूजा क्यों करनी चाहिए और उद्देश्य क्या है। भागवत में लिखा है, अहम एवासम एवाग्रे ना यत सत असत परम, अर्थात सृष्टि के पहले मैं ही था कृष्ण। चतुर्श्लोकी भागवत। उन कृष्ण ने इच्छा की, एको अहम बहुश्याम, मैं अकेला हूं, मैं अनेक बनूंगा। क्यों ऐसी इच्छा की? रस का वर्धन, आस्वादन, रसास्वादन बढ़ाने के लिए। हम अपना ही उदाहरण दे सकते हैं कि अगर मैं अकेला हूं इतनी बड़ी कोठी में और मैं चाहता हूं कि मेरा आनंद बढ़े, तो मैं अकेला हूं, उससे ज्यादा आनंद मुझे जब दो होंगे, चाहे वो कुत्ता हो, बिल्ली हो, पत्नी हो, पति हो, पुत्र हो, पुत्री हो, तो दो होने से आनंद बढ़ता है। पाश्चात्य देशों में अकेले लोग बहुत रहते हैं, डिवोर्स है, बच्चे चले जाते हैं कंपलसरी, और अकेला बूढ़ा बूढ़ी रह जाते हैं, तो कोई है नहीं, क्या करें? टीवी कितना देखें या जो भी करना है कितना करें, तो वो लोग बिल्ली रखते, बिल्ली या कुत्ता रखते हैं, दो हो जाए। तो ये आइडिया है कि भगवान अपने आप में आत्माराम होते हुए अपने आप में सक्षम है आनंद वर्धन करने के लिए, लेकिन उन्हें ये इच्छा की, मैं अनेक बनूंगा। क्यों? आनंद वर्धन के लिए। आनंद वर्धन के लिए उनके अनंत विस्तार और अनंत कैटेगरी का विस्तार किया। कोई स्वांश है, कोई विभिन्नांश है, कोई उनकी शक्ति है, कोई उनके अंश के अंश है, प्रकाश है, वैभव है, विलास है, कला है, कला की कला है, अनंत कोटि अवतार है, अनंत कोटि जीवात्माएं हैं। एक सृष्टि की रचना की, जैसे हम घर की रचना करते हैं, घर में सब कुछ, सोफा, पति पत्नी, बच्चे, किचन, खान पान, सोना, बाथरूम, बेडरूम, ऐसा क्या बाहर नहीं, हम गली में नहीं सो सकते, गली में नहीं रह सकते, ऐसा क्यों? क्योंकि ये सुविधा है, आनंद थोड़ा वर्धन, आनंद का वर्धन होगा, इसलिए हम सुविधाएं करते हैं। तो भगवान ने ऐसी सुविधा की आनंद बढ़ाने के लिए, वो सुविधा है गोलोक वृंदावन, आध्यात्मिक जगत, जहां हर जीव श्री कृष्ण की सेवा में आनंद जुटेगा। तो भगवान ने एक सृष्टि बनाई, घर बनाया, जिसमें सब जीवात्माएं खुद, उनकी शक्तियां, उनका विस्तार, उनके अवतार, उनका सब कुछ, पेड़ पौधे, कुत्ते, बिल्ली, सब कुछ है वहां। लेकिन वो सब कुछ दिव्य है, दिव्य कहते हुए नेगेटिविटी नहीं है। बिल्ली है घर में, तो बिल्ली घर में गंदा गंदगी नहीं करेगी, उनसे जो नेगेटिविटी है मृत्यु नहीं होगा उनका। ऐसा दिव्य देश बनाया भगवान ने, ये सब कुछ एब्सोल्युटली पॉजिटिव डिरेक्शन, आनंद सुख दुख नहीं, सुख गर्मी ठंडी दोनों हो सकती है लेकिन दुख देने के लिए नहीं। तो वो ठंडी होगी लेकिन आपको दुख देने वाली नहीं, गर्मी होगी लेकिन आपको दुख देने वाली नहीं। जैसे कि वहां हमें खिचड़ी पकानी है, खाना पकाना है, तो गर्मी की जरूरत पड़ेगी, हालांकि वो एब्सोल्यूट जगत है, ठंडी से भी पक जाएगी खिचड़ी क्योंकि वहां नेगेटिविटी है नहीं। तो ऐसा जगत भगवान ने बनाया क्यों, आनंद का वर्धन हो। मैं अकेला हूं और मैं अनेक बनूंगा ताकि मैं भी खुश और मैं बनूंगा आत्मा स्वांश विभिन्नांश, जो भी मेरा विस्तार होगा सब खुश और मैं भी खुश। ध्यान दो, हम कृष्ण की ही पूजा क्यों करें, ये सवाल है। तो भगवान ने हमें उत्पन्न किया क्यों, हम भी खुश वो भी खुश। जैसे माँ बाप बच्चा पैदा करता है, माँ बाप ये इंटेंशन से बच्चा नहीं पैदा करता कि टॉर्चर करूंगा, उनको दुख दूंगा, उनको नहीं, बच्चा भी माँ बाप भी खुश। उसी तरह हमें पैदा किया, हम भी खुश वो भी खुश। लेकिन समटाइम्स ऐसा देखा गया है कि बच्चा छोटा होने के नाते माँ बाप को गाली देता है, माँ बाप से भाग जाता है, और कई बच्चे माँ बाप नहीं चाहते हैं वो काम करते हैं, सिगरेट पीना या कई कई चीज़ें हैं जो माँ बाप नहीं चाहते हैं, फिर भी वो करते हैं, तो माँ बाप से उल्टा चलता है बच्चा। तो वो माँ बाप से उल्टे चलने का अर्थ है उनका दुख बढ़ जाएगा, खान पान की चिंता, पहनने की चिंता, रहने की चिंता, एजुकेशन की चिंता, सब चिंता बढ़ जाएगी। लेकिन नहीं, मुझे माँ बाप नालायक, तो माँ बाप क्या करे, क्या कर सकते। बच्चा कहता मैं मेरा हाथ अग्नि में डालूंगा, छोटा बच्चा कहता है, माँ बाप कहते हैं नहीं मत डालो, जलोगे, नहीं मैं डालूंगा, कैसे रोकोगे। सत्संग हो रहा है, बच्चे को कहते हो बोलो नहीं, वो आवाज करेगा, वो नाचेगा कूदेगा। तो उसी तरह भगवान ने सृष्टि बनाई, हमें बनाए, क्यों बनाए, उनका आनंद का वर्धन हो, हमारे आनंद का भी वर्धन। तो ये आइडिया था, बच्चा माँ बाप की भक्ति करता है कि नहीं, माँ बाप से टेढ़ा मेढ़ा चलेगा तो दुखी, माँ बाप के अनुकूल चलेगा, माँ बाप की पूजा, माँ बाप का कहा मानना, माँ बाप के मुताबिक चलना, तो बच्चा भी खुश और माँ बाप भी खुश। तो उसी तरह आत्मा ये श्री कृष्ण का अंश है, अंश होते हुए आत्मा को चाहिए कि वो श्री कृष्ण को अनुकूल बने, प्रतिकूल नहीं, कृष्ण से उन्मुख रहे, विमुख नहीं। जैसे बच्चा विमुख चल रहा है तो दोनों दुखी हो जाएंगे, स्वाभाविक है, क्योंकि बच्चा माँ बाप का अंश है, इसलिए बच्चे को माँ बाप की गोदी में जो आनंद आएगा वो किसी और की गोदी में आनंद नहीं आएगा और कहीं और जगह भी आनंद नहीं आएगा। लेकिन अगर अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके बच्चा माँ बाप को गाली देता है, भागता भाग जाता है वगैरह करता है तो दुखी हो जाएगा। स्वाभाविक तो यह है कि बच्चा माँ बाप की सेवा करें, माँ बाप को अनुकूल चलें, ये स्वाभाविक है। और माँ बाप की गोदी में ही आनंद आता है। कृष्ण की पूजा ही क्यों करें? क्योंकि हम उनके बच्चे हैं, आत्मा श्री कृष्ण का अंश है, आत्मा परमात्मा का अंश है, इसलिए उनकी ही सेवा पूजा करनी पड़ेगी। जैसे हाथ है, सुंदर उदाहरण प्रभुपाद देते, हाथ है, ये शरीर का अंश है, इसलिए हाथ का हित तभी हो सकता है जब ये हाथ ये शरीर से जुड़ा रहे और ये हाथ ये शरीर की सेवा करे। तो ये हाथ को शरीर से हृष्टि पुष्टि शक्ति सब कुछ मिलेगा, लेकिन ये हाथ ये शरीर का अंश है, लेकिन ये हाथ के पास जो लड्डू है वो सब शरीरों को देता है, सबको, लेकिन अंशी शरीर को नहीं, अंशी शरीर की सेवा नहीं करेगा ये हाथ। 10 दिन 15 दिन 30 दिन कब तक चलेगा? यहां नहीं देगा तो कब तक ये चलेगा? ये हाथ को लड्डू की सेवा ये शरीर को करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये हाथ ये शरीर का अंश है, ये शरीर का नहीं, ये शरीर का नहीं, लेकिन ये हाथ सब शरीरों को लड्डू देता रहे, यहां नहीं। उसी तरह हम कृष्ण के अंश हैं, इसलिए हमें कृष्ण की ही सेवा करनी ही पड़ेगी, नो चॉइस। कृष्ण की ही भक्ति क्यों? कृष्ण की ही पूजा क्यों? ये हाथ ये शरीर की ही पूजा क्यों करे? दूसरे शरीरों की करे तो नहीं चलेगा, और करता रहे यहां नहीं करे, क्योंकि ये हाथ ये शरीर का अंश है, इसलिए भाग है, इसलिए ये हाथ को पहली फर्ज बनती है कि लड्डू की सेवा ये शरीर को करे, और बाद में सब कुछ, पहले ये शरीर, क्योंकि ये शरीर से जुड़ा है और ये शरीर का अंश है। तो कृष्ण की ही पूजा क्यों? क्योंकि हम कृष्ण के ही अंश हैं, और किसी की, देवी देवताओं के अंश हम नहीं है, देवी देवता भी कृष्ण के अंश है, माँ बाप भी कृष्ण के अंश है, सब कृष्ण का है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत किंचित जगताम जगत एन त्यक्तेन भुंजिता मा अग्रद कस्य सिद्धनम। सब श्री कृष्ण का है, क्योंकि उनने पैदा किया है, और शास्त्र भी कहते हैं कि कृष्ण ही द गॉड, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, और उनसे ही सृष्टि हुई है। गीता हमारा धर्म पुस्तक है सबका, तो गीता में सब कुछ स्पष्ट बताया, अहम सर्वस्य प्रभवो, मेरे से सब कुछ उत्पन्न होता है, सचराचर मेरा है, भोक्ताराम यज्ञ तपस्याम सर्वलोक महेश्वरम श्रुत सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम इच्छति। मैं भोक्ता हूं क्योंकि मैंने ये सब कुछ बनाया है। हम जो भी पैदा करते हैं हमारे लिए, हमारे सुख के लिए, हमारी सेवा के लिए, तो कृष्ण ने जो कुछ पैदा किया वो उनके सुख के लिए, उनकी सेवा के लिए, उनके लिए होना चाहिए, स्वाभाविक। सचराचर श्री कृष्ण का है, ईशावास्यम इदम सर्वम, और उसी का है, इसलिए सब कुछ उनकी सेवा के लिए है, उनने पैदा किया है, इसलिए सब कुछ उनकी सेवा के लिए ही है। तो कृष्ण ये ओरिजिनल क्रिएटर है, ओरिजिनल सृष्टि के रचयिता, स्रष्टा, सर्जनहार, उनमें से सब कुछ पैदा होता है, इसलिए सब कुछ को चाहिए कि उनसे संलग्न रहे, उससे उल्टा तुरंत माया। तो कृष्ण की ही पूजा क्यों? क्योंकि कृष्ण ही सब अवतार, सब देवी देवता, सब जीवात्माओं, सब सृष्टियों के एकमात्र उद्गम स्थान है। अहम सर्वस्य प्रभवो, अहम सर्वस्य प्रभवो, सूत्रे मणि गणाइव। तो कृष्ण की पूजा क्यों? क्योंकि वो ही द गॉड है। बाकी के देवी देवता है, 33 करोड़ देवी देवता है, 33 करोड़ देवी देवता है, उनके अंश है, मनुष्य उनके अंश है, सब कोई उनके विस्तार है, चाहे वो अवतार हो, चाहे जीव हो, चाहे जो भी हो, सब कुछ उनका है, सब कुछ उनका है। इसीलिए सब कुछ उनकी सेवा के लिए, उनके उपयोग के लिए, उनके सुख देने के लिए। जो हम पैदा करते हैं हमें सुख दे, घर पैदा करते हैं हमारे सुख के लिए, बच्चे हमारे सुख, पैसा हमारे सुख के लिए, क्योंकि हमने पैदा किया। उसी तरह कृष्ण ने पैदा किया तो उनके सुख के लिए होना चाहिए, हमारे सुख के लिए थोड़ी। तो इसीलिए हमारा सब कुछ है वो उनके पूजा के लिए, उनके सुख के लिए, उनके आनंद के लिए होना चाहिए, क्योंकि वो हमारा नहीं है, हम भी उनके हैं और हमारा भी उनका है। तो कृष्ण की ही पूजा क्यों? क्योंकि वो ही द गॉड है। देवी देवताएं नहीं है, मनुष्य नहीं है, राक्षस भूत पितृ नहीं है, श्री कृष्ण ही है। इसीलिए उनकी ही पूजा करनी पड़ेगी। सब कुछ उनका है, हम भी उनके अंश हैं, इसलिए हमें उनकी ही सेवा करनी पड़ेगी। सिंपल बात है। अब हम कह सकते हैं ऐसा ही क्योंकि कृष्ण ही सबका उद्गम स्थान, कृष्ण का ही सब कुछ क्यों? क्योंकि शास्त्र साधु और गुरु कह रहे हैं सत्य कृष्ण ही है, तत्व कृष्ण ही है, ब्रह्म कृष्ण ही है, परम ब्रह्म कृष्ण ही है, अर्थात ब्रह्मनो प्रतिष्ठाहम, ब्रह्म भी उनका विस्तार है, कृष्ण का ब्रह्म, या तो ब्रह्म कृष्ण है, वेदों के मुताबिक ब्रह्म कृष्ण ही है, या तो ओरिजिन कृष्ण है, ब्रह्म नहीं, सबका मूल एक और वो है कृष्ण, ईश्वर परम कृष्ण सत चित आनंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम, सब कार्यों का कारण है कृष्ण। शॉर्ट में, क्योंकि कृष्ण ही सबका स्रोत है, इसलिए सब कुछ सचराचर उनके आनंद के लिए, उनकी पूजा के लिए, उनके सुख के लिए ही है, क्योंकि उनने पैदा किया है, किसी और ने पैदा नहीं किया। अब बाकी बात रही इंटरफेथ, तो आस्तिकता में भगवान एक है ऐसा कहते हैं, चाहे क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो या हिंदू हो, भगवान एक है, और सही है, एक ही है, वो है कृष्ण। वो लोग कहें अल्लाह, वो लोग कहें यहोवा, हम कहें कृष्ण, लेकिन व्यक्ति गॉड एक है। तो हम गुलाब के फूल को, मैं रोज कहता हूँ, आप गुलाब कहते हो, लेकिन फूल वही है, यथा नाट्य धरो यथा, एक्टर एक है, एक्टर ओरिजिनल भगवान एक है, लेकिन जब नाटक करता है वो भगवान तो अलग अलग रूप में दिखाई देता है, कोई निराकार दिख में दिखता है, कोई परमात्मा रूप में दिखता है, कोई भगवान के रूप में दिखता है, कोई ब्रह्म ज्योति के रूप में दिखता है, अलग अलग, क्योंकि उनका देखना, उनका पर्सपेक्टिव अलग है, चीज एक है लेकिन पर्सपेक्टिव अलग है, इसलिए अनेक रूप में वो, विविध रूप में वो दिखाई देता है। जैसे एक हाथी हो, एक अंधा बालक हो, अंधा बालक हाथी के पांव को पकड़ता हो, ये तो कंबा है, और जब बालक दूसरे भाग को पकड़ता है, कान को पकड़ता हो, ये तो कोई पंखा है, अलग अलग दिख उनको, ये तो है, वो है, क्योंकि बड़ा हाथी को वो हाथ लगाता है तो थोड़ा सा उनको महसूस होता है, कंप्लीट पिक्चर नहीं है। उसी तरह भगवान श्री कृष्ण अनंत रूप में अलग अलग लोगों को अलग अलग दृष्टि से, अलग अलग भाषा से, अलग अलग उनको अनुभव होता है, ये भगवान, ये भगवान, ये भगवान, भगवान एक है, वो है कृष्ण। कृष्ण नट है, नट तो अलग अलग ड्रेस पहनता है, रामचंद्र का ड्रेस, विष्णु का ड्रेस, वराह कच्छा मच्छा अवतार, नरसिंह वगैरह वगैरह, अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग शक्ति लेके, अलग अलग ऐश्वर्य लेके, अलग अलग वैभव ऑपुलेंस लेके, ऐश्वर्य लेके आता है, तो हमें अलग लगता है। कृष्ण की ही पूजा क्यों? क्योंकि वही सबका स्रोत है, हमारा स्रोत वही है। शॉर्ट में है, कृष्ण की ही पूजा क्यों, मूल में पानी डालो सारा पेट तृप्त। इसी तरह कृष्ण की पूजा करो, कृष्ण को तुष्टि पुष्टि करो, सारा सारी सृष्टि, देवी देवताएं, मनुष्य, माँ बाप सब खुश, क्योंकि मूल में पानी। यथा तरो मूल निषेचने न तुष्यंति तद स्कंद भुजो पशाखा प्राणोपचारेण थेन्द्रियाणाम तथैव सर्वैर हनाम अच्युतेज्या। अच्युतेज्या पूजा, श्री कृष्ण की पूजा करने से सबकी पूजा हो जाती है आपो आप। जैसे पेड़ के मूल में पानी डाला, सारा पेड़, पत्ते, फूल, फल सब तृप्त। इसी तरह कृष्ण सबकी जड़ है, और जड़ में पानी डालो ये बुद्धि है। कृष्ण की ही पूजा की, और उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि हमें आनंद चाहिए, तो कृष्ण सच्चिदानंद है। आनंद, कृष्ण आनंद ही है। कृष्ण को हम कहेंगे कृष्ण के पास आनंद है, ऐसा कहेंगे तो जो गलत है। कृष्ण ही आनंद है, कृष्ण और आनंद अलग चीज नहीं है। सच्चिदानंद कृष्ण ही आनंद, कृष्ण का नाम ही आनंद है। तो उन आनंद की प्राप्ति हमें करनी है तो उनकी सेवा करनी पड़ेगी। जैसे आप कुत्ता की सेवा करोगे तो कुत्ता आपको आनंद देगा, कुत्ता आपको प्रेम करेगा। पत्नी पति की सेवा करती है, आनंद मिलता है, और पति पत्नी की सेवा करता है, आनंद मिलता है। सेवा में आनंद है। उद्देश्य क्या है? हमें आनंद चाहिए। तो हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो पावर हाउस को ज्वाइन कर दो आपका तार, तो आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहेगी। लेकिन जैसे डिस्कनेक्ट कर दिया तार आपका, नो इलेक्ट्रिसिटी। तो आनंद कृष्ण ही है, और कृष्ण में हम प्लग इन कर दें तो वहां से आनंद मिलता रहेगा। कृष्ण से जुड़ना है, जुड़ने का अर्थ है वो आनंद प्राप्ति के लिए। जैसे कि बड़ा लेक है आपका, यहाँ लेक के नीचे हमारा खेत है, खेत में पानी चाहिए तो वहां ट्यूब लगा दो, साइफन लगा दो, तो आपके खेत में पानी ऑटोमेटिक, कोई इलेक्ट्रिसिटी जरूर नहीं, पंप की जरूर नहीं, मजदूरी की जरूर नहीं, कुछ नहीं, ऑटोमेटिक वहां से साइफन से पानी निकलता रहेगा। कृष्ण आनंद है, आनंद का समुदाय, कृष्ण आनंद ही है। और उसमें हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, साइफन लगा दो ऑटोमेटिक आनंद आता रहेगा। कृष्ण आनंद का आगार है, हरे कृष्ण महामंत्र से बहता है वो आनंद और हमारे पास आ जाता है। उद्देश्य क्या है? आनंद। तो आनंद के पास से आनंद लोगे तब तो काम बनेगा। निरानंद जगत निरानंद है, जगत जड़ जगत निरानंद है, उसमें साइफन लगाओगे तो कुछ नहीं निकलेगा, क्योंकि निरानंद आनंद है नहीं वहां। लगता है, प्रतीति होती है, इसलिए माया को प्रतीति बोला भगवान ने। ये चतुर्श्लोकी श्लोक का दूसरा श्लोक, रीति अर्थम यत प्रतीयत न प्रतीयत च आत्मनि यथा आभास तथा अम्बसो। आभास खोखला है जगत, आभास है, प्रतिबिंब है, अर्थात रियलिटी नहीं है, सत्य नहीं है। आनंद ये जड़ जगत में आपको नहीं मिलेगा, सुख शांति आनंद मुक्ति आपको ये जड़ जगत से प्राप्त नहीं हो सकता, वो कृष्ण के पास है, कृष्ण ही आनंद है। तो इसलिए हमें आनंद की प्राप्ति है, उद्देश्य हमारा आनंद है तो वहां से मिलेगा। और कीर्तन ही क्यों? क्योंकि वो कीर्तन हरे कृष्ण मंत्र ये साइफन। तो ये शास्त्रों में कहा है, कलो दोष निधे राजन अस्ति एको महद्गुणा कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम रजित। कृष्ण का कीर्तन कलो दोष निधे राजन, कलयुग में सब कुछ दोष का निधि है, लेकिन कृष्ण का कीर्तन करने से हम सुखी बन सकते हैं। तो कीर्तन है क्यों? क्योंकि सतयुग द्वापर त्रेता अलग अलग समय का, अलग अलग भगवत प्राप्ति आनंद प्राप्ति का प्रोसेस है। तो कलयुग का प्रोसेस है हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। उल्टा कहा सीधा कहा और 9 बार कहा और रिपीटेडली कहा हरेर नाम एव केवलम, ओनली कृष्ण कीर्तन कृष्ण का नाम। और शास्त्रों में कलयुग के लिए यही एकमात्र उपाय बताया है। अनंत कोटि श्लोक आपको मिल सकते हैं कि कलयुग में खाली कीर्तन, कलय संतरण उपनिषद हरे कृष्ण महामंत्र खाली, ब्रह्मांड पुराण द्वान त्रिन अक्षरम मंत्र नाम षोडकान्वित प्रजपन वैष्णवो नित्यम राधा कृष्ण स्थलम लभेत। द्वान त्रिन दिस वन टू टू प्लस 30 32 अक्षर मंत्र नाम षोडशकान्वित 16 नेम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे प्रजपन वैष्णवो नित्यम नित्य जप करना। तो राधा कृष्ण स्थलम लभेत, राधा कृष्ण का स्थल का प्राप्ति वैकुंठ गोलोक वृंदावन की हमें प्राप्ति होगी। ऐसा कई जगह शास्त्र में लिखा है कि हरे कृष्ण महामंत्र ही इस युग का एक मात्र उपाय है। माया के बारे में विजय कैसे प्राप्त करें? तो रुते अर्थम यत प्रत्येत च आत्मनि, जो श्री कृष्ण के संबंध में नहीं है उनको माया जानो, अर्थात सब कुछ कृष्ण से जुड़ा हुआ है। जो श्री कृष्ण से हम अलग करते हैं उनको क्या कहते हैं? माया। सब कुछ श्री कृष्ण से संलग्न है और सब कुछ कृष्ण का है, इस अवास्यम इदम सर्व। और हम कहते हैं मेरा है, तो जो हम मेरा करते हैं वो माया है। ये सब कुछ कोठी एक कोठी कृष्ण की है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से कोठी के लिए आपको चाहिए वो किसने बनाया? कृष्ण ने। कोई मिट्टी पैदा नहीं कर सकता, मिट्टी के बिना ईंट नहीं होती, ईंट के बिना कोठी नहीं होती, सब कुछ कृष्ण का है। लेकिन नहीं मेरा, तो दैट बिकम्स माया, मेरा 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 माया। तो फिर से वो चीज मेरा कृष्ण से जोड़ दो, दिव्य हो गया। तो रुते अर्थम यत प्रतियत न प्रतियत च आत्मनि, प्रतिबिंब है ये प्रतिबिंब। जैसे माया प्रतिबिंब है, माया इल्यूजरी है, माया अज्ञानता है। कैसे? जैसे मेरे पास शीशा है, प्रतियत प्रतीति होती है, मेरा फेस मेरा होठ अंदर प्रतीति होती है। और मैं यहाँ लिपस्टिक करूं तो मुझे यहाँ करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक लिपस्टिक हो जाएगी वहां। लेकिन वहां लिपस्टिक करूं और मुझे हो जाए, उल्टा नहीं होगा। तो यह है माया, ये माया है प्रतीत प्रतीति। मैं ओरिजिनल हूं और अंदर चल कपट, अंदर लगता है कि मैं हूं, लेकिन अंदर खोखला, अंदर कुछ नहीं है, माया। मैं लिपस्टिक करूं अंदर आ जाए, अंदर लिपस्टिक करो रियलिटी नहीं आएगी। यहां रियलिटी ये है तो वहां, तो ये माया है प्रतीत अंबशा आभास, ये है माया। भगवान से जो अलग करते हैं हम वो है माया। हम क्या कहते हैं? वो ये रियलिटी है, ये रियलिटी है, ये रियलिटी नहीं है। लगता है कि रियलिटी है लेकिन वो रियलिटी नहीं है। इलूजन है। बालक कहेगा हाँ आप तो अंदर मिरर में बैठे हो। बालक को वो टीवी है, टीवी में कोई बैठा है, देखो बैठा है और वो बोल रहा है। बालक हाँ बैठा है कोई, लेकिन हम जानते हैं अंदर नहीं बैठा, कहीं और बैठा है, टीवी में नहीं बैठा। ये माया इल्यूजन, और बालक अज्ञानतावश समझता है कि हाँ अंदर बैठा है और बोल रहा है गा रहा है। तो ये है माया, कृष्ण की शक्ति है, कृष्ण की जीव को अंधकार में डालने वाली शक्ति है। और पहला अंधकार क्या है माया का, इल्यूजन अज्ञानता आपको क्या करती है, आप ये शरीर हो। और दूसरा अंधकार क्या माया करती है कि ये शरीर के संबंधित तेरे, ऐसा माया समझाती है। तो उसको बोलते हैं विक्षेप, आत्मी का शक्ति विक्षेप डालती है। ये माया के दो फंक्शन, देह और देह के संबंधियों के साथ अहम ममत्व कराती है माया, अर्थात हमें माया समझाती है, क्या ठसाती है, तू ही ये शरीर हो और ये शरीर के संबंधी पत्नी तेरी है, बच्चे तेरे हैं, कोठी तेरी है, बैंक बैलेंस तेरा है, गाड़ी तेरी है, देश तेरा है, गली तेरी है, सिटी तेरी है, माया समझाती है ये तेरा है, तेरा तेरा, मेरा मेरा मेरा, हम आत्मा है और हम समझते हैं हम शरीर है, ये माया है। और हम शरीर के स्तर पर चलते हैं, आत्मा के आध्यात्मिक स्तर पर नहीं चलते, भौतिक शरीर के भौतिक स्तर पर चलते हैं, माया स्तर पर, अज्ञानता का स्तर पर, नकली स्तर पर। और वही माया के दो उग्र स्वरूप हैं, हनी एंड मनी, शंकराचार्य ने कहा कांचन एंड कामिनी, ये माया का उग्र स्वरूप। बिवल्डर, इट विल बिवल्डर यू, वुमन मैन फॉर वुमन वाइस वर्सा, ऐसा नहीं कि वुमन ही कल्प्रिट है मैन के लिए, वुमन के लिए मैन भी कल्प्रिट है। प्रभुपाद जी कहते हैं मैन बाय हिमसेल्फ इज वेरी गुड, वुमन बाय हरसेल्फ इज वेरी गुड, बट व्हेन दे कम टुगेदर दे बोथ वेरी बैड, बिकॉज क्यों, सब कुछ बैड पैदा होगा, इल्यूजन अज्ञानता सब कुछ, मोह माया पैदा हो जाएगी, हनी एंड मनी, ये माया के उग्र स्वरूप है। तो माया के बारे में बताइए, ये माया, हम आत्मा है, दूसरा सब कुछ हम सोचते हैं वो माया है। भगवान श्री कृष्ण की ओर चलने में रुकावट जो डालती है, जो भी रुकावट डालता है वो है माया, वो शरीर हो, संबंधी हो, फैक्ट्री हो, कोठी हो, मनी हो, हनी हो, ज्यादातर हनी एंड मनी ये रुकावट डालती है कृष्ण की ओर चलने के लिए। कौन रुकावट डालता है, ज्यादातर हनी एंड मनी। तो ये माया है, इल्यूजन, अज्ञानता, प्रतिबिंब, प्रतीति, रुते अर्थम यत प्रतियत, ये माया है। और माया से कैसे तरे, देवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ते, जो मेरे शरण में आता है कृष्ण कहते हैं वो माया को तर जाता है। और हमारा अनुभव है हम मुक्त, हम माया का अर्थ है लोडेड, यू बिकम लोडेड एंड लोडेड, माया नहीं होना, भक्ति होना का अर्थ है आप लाइट 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 होते जाओगे, लाइट लोडेड, बिजनेस का लोड, पत्नी का लोड, नौकरी का लोड, बैंक बैलेंस का लोड, पेपर सब कुछ लोड, और सबकी इच्छा पूर्ति करो, पति पत्नी की इच्छा पूर्ति करो, बच्चों की पूर्ति करो और उसमें लगे रहो, और समझेंगे यही सही है, यही सत्य है, यही सत्य है। वो माया आपको ठसाएगी, माया का बिजनेस है, यही सत्य है, जो सत्य नहीं है वो सत्य करी मानी, असत्य रे सत्य करी मानी, असत्य को सत्य जो मनाती है वो है माया, असत्य को जो सत्य मनाती है वो है माया। तो माया कैसे तरे, मामेव ये प्रपद्यन्ते, कृष्ण के शरण में जाना होगा, कृष्ण के शरण में जाना मतलब हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरे राम हरे राम 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 हरे हरे,
सिंपल। माया में ताम तरंती थे, बिजनेस डिटेच कैसे हो सकते हैं, मानो या ना मानो सब कुछ कृष्ण का है। इसीलिए सब कुछ कृष्ण से संलग्न करने हो गया छुट्टी। हे भगवान ये बिजनेस आपका है, हे भगवान ये कोठी आपकी है और हम केयर टेकर है। कृष्ण भक्त आर मोस्ट इंटेलिजेंट मैनेजर, सो यू हैव टू कनेक्ट एवरीथिंग टू कृष्ण और वी आर केयर टेकर, वी आर टेकिंग केयर ऑफ इट। एंड उसमें हमारा कट भी हमें कट भी मिलता है ना? भोग लगाओ भगवान हमें कट देते हैं, कोठी बनाओ भगवान की कोठी है, हम उनमें उनकी सेवा के लिए रह रहे हैं। चेंज द कॉन्शियसनेस, चेंज द कॉन्शियसनेस टू योर्स कृष्णस, दैट्स ऑल। जो हम उपार्जन करते हैं उनका कुछ 10% शास्त्र कहते हैं कृष्ण की सेवा में लगाओ और 90% आपकी सेवा में, वो 90% भी कृष्ण की सेवा में लगाओ, लेकिन उपयोग कर सकते हैं उनको ध्यान में रखते हुए। बिजनेस डिटैचमेंट कैसे हो, तोड़ना कुछ नहीं हमें जोड़ना है, बिजनेस को कृष्ण से जोड़ दो, ये आपका है कृष्ण का है और मैं केयर टेकर हूं, बस डिटैच हो गए, आपका है आपको करना है, मैं जितना हो सके इतनी कार्य का सब कुछ करूंगा जितना हो सके, बाकी का आपका है, और इससे शांति हो जाएगी। हरे कृष्ण माला क्यों 16 क्यों, चार माला क्या अधूरा है? हरे कृष्ण माला क्यों, क्योंकि कलयुग का एकमात्र प्रोसेस, कलयुग में श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्ति उनके नामों के रटन से ही होगी। कृतयत ध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजतो मकई द्वापरयाम परिचार्यायाम कलो तद हरि कीर्तनाद। कलयुग में कृष्ण का कीर्तन, कृतयत सतयुग में भगवान कृष्ण का ध्यान, त्रेतायाम मकई बड़े बड़े यज्ञ, त्रेता युग में कृष्ण की प्राप्ति के लिए यज्ञ करना, और द्वापर में बड़े बड़े तिरुपति बालाजी जैसे बड़े बड़े मंदिर बनाना और बड़ी बड़ी सेवाएं, 56 भोग, आरतियां, अभिषेक, पूजा, और कलौ तदहरु कीर्तन, कलयुग में खाली भगवान के नाम का कीर्तन, ये प्रोसेस है। तो हरे कृष्ण महामंत्र ही क्यों, क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र ही शास्त्रों में एकमात्र इलाज कलयुग के लिए बताया है। और कितना कीर्तनीय सदा हरि, सततम कीर्तयन्तु माम, 24 घंटा भगवान का नाम का रटन करना है, लेकिन हो नहीं पा रहा है तो आचार्यों ने उसका आधा किया आधा किया आधा किया, 128 माला करो, उसका आधा किया 64, आधा किया 32, बाद में प्रभुपाद जी ने न्यूयॉर्क में कहा 16 माला बस, उससे कम नहीं। तो 16 माला प्रभुपाद जी का नियम है और प्रभुपाद जी हमें गारंटी देते हैं कि जो 16 माला करेगा और चार नियमों का पालन करेगा उनका कल्याण गारंटी, और कुछ कमी रहेगी तो प्रभुपाद जी पूरी करेंगे, ये उनकी गारंटी है। हमें गारंटेड चीजें चाहिए ना, ये गारंटेड माल है, शास्त्र युक्त, प्रभुपाद युक्त, साधु युक्त, गुरु युक्त, गारंटेड 16 माला, चार नियम, गो बैक टू होम, बैक टू गॉड है, कल्याण में कोई कमी नहीं रहेगी, गारंटी। श्रद्धा शब्द विश्वास कर, श्रद्धा प्रभुपाद जी के शब्दों में, शास्त्रों के शब्दों में, कृष्ण के शब्दों में, गुरु के शब्दों में, साधुओं के शब्दों में, संत महात्मा के शब्दों में हमें विश्वास करना चाहिए। तो इसीलिए 16 माला हमसे 24 घंटा नहीं हो रहा है तो कम करके 16 माला, डिवोशन अधूरी रहेगी, हाँ रहेगी अधूरी, क्यों कि प्रोसेस है और आप कर रहे हैं कुछ है। आप केमिकल रिएक्शन का प्रोसेस है, कैटलिस्ट अंदर डालना होता है ना। और हम कहें कि नहीं ये नहीं होगा, प्रोसेस बदल दो, ये कैटलिस्ट नहीं, उसमें डर्ट डालो, हो जाएगा रिएक्शन। प्रोसेस नहीं है तो रिएक्शन नहीं होगी, ना होगा तो प्रोडक्ट आपका सही बाहर नहीं आएगा। उसी तरह कलयुग में प्रोसेस है हरे कृष्ण महामंत्र, कैसे कहेंगे शास्त्र साधु गुरु, हमें प्रोसेस पकड़ना होगा। कलयुग का प्रोसेस है हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरे राम राम राम। अभी हम वृंदावन की ओर चलते हैं। तो वृंदावन में नित्य लीला के बारे में सवाल है, तो नित्य लीला के बारे में कुछ प्रकाश डालते हैं। मथुरा नित्य सन्निहितो हरि ही भागवत, भगवान श्री कृष्ण नित्य सन्निहितो, वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण हमेशा वास करते हैं। वृंदावन परितज्य पाद एकम न अभिगच्छति, वृंदावन छोड़ के कृष्ण एक डग भी बाहर नहीं जाते। वृंदावन नित्य सन्निहितो हरि, तो भगवान का सदैव वहां वास है, कृष्ण का। और जहां वास होता है वहां उनकी क्रिया होती है, और उन क्रिया को हम लीला कहते हैं। उनकी क्रिया लीला है। लीला का अर्थ है कि आनंद लेने के लिए और आनंद देने के लिए जो कार्य होता है उसको बोलते हैं लीला। सो कृष्ण आनंद लेते हैं और भक्तों को देते हैं। सो लीला का कारण है आनंद, नित्य लीला का कारण है आनंद। किसको आनंद चाहिए? कृष्ण को। और किसको आनंद देना है? उनके भक्तों को। तो लीला का कारण है आनंद, फल भी आनंद है। लीला का फल भी क्या है? आनंद, आनंद की वृद्धि। तो अपने आनंद की वृद्धि भी और दूसरों के आनंद की वृद्धि भी, ये लीला है। लीला का अर्थ है यह। भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में सदैव वास करते हैं। नित्य सन्निहित तत्र भगवान मधुसूदन, ये भागवत 11:31-24। मधुसूदन, मधु का हंता मधुसूदन कृष्ण, तो नित्य सन्निहित तत्र भगवान मधुसूदन। और मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि ही, मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि ही, भागवत 10:1-28। तो भगवान हमेशा मथुरा वृंदावन रहते हैं और वहां हमेशा रहते हैं तो कार्य करते होंगे, कुछ न कुछ तो करते होंगे, तो उनको बोलते हैं लीला। वो खाली नहीं बैठते, जीवात्मा खाली नहीं बैठ सकता, उसी तरह भगवान भी खाली नहीं बैठ सकते, हमेशा कुछ न कुछ करते होंगे। तो जो भी वो करते हैं खुद भी आनंद लेते हैं, जो करते हैं उनका आनंद खुद भी लेते हैं और दूसरों को भी देते हैं, इसको बोलते हैं लीला। प्रकट लीला और अप्रकट लीला। प्रकट लीला का अर्थ है भौम वृंदावन, अर्थात ये मथुरा हमारा ये भूमि पर भौम वृंदावन, ये प्रकट लीला है। और गोलोक वृंदावन ये अप्रकट लीला है। तो वृंदावन में भगवान प्रकट लीला में वहां की लीला प्लस मचमौर लीलाएं भव वृंदावन में करते हैं। इसलिए ये वृंदावन जो हमारा है भव वृंदावन, उनको मूल वृंदावन कहा गया, जो वैकुंठ आदि उनके अंश अंशम कहा। वैकुंठ आदि वृंदावन नित्य वृंदावनम धामम, नित्यम वृंदावनम नामम ब्रह्मांडो परिसंस्थितम, पूर्ण ब्रह्म सुखैश्वर्यम नित्यम आनंदम अव्ययम, वैकुंठादि तद अंश अंशम स्वयं वृंदावन भुवि। वृंदावन भुवि ये श्लोक है पद्म पुराण पाताल खंड 6989। नित्यम वृंदावनम नामम ब्रह्मांडो परिसंस्थितम, ये ब्रह्मांड में वृंदावन नाम का धाम स्थित है, वो पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण के सुख ऐश्वर्य के लिए है। सुख ऐश्वर्य आनंद मैंने कहा था, लीला का अर्थ है आनंद, खुद आनंद लेना दूसरों को आनंद देना। तो पूर्ण ब्रह्म कृष्ण का सुख ऐश्वर्य उनके सुख आनंद के लिए, नित्यम आनंदम अव्ययम, और ये वृंदावन नित्यम आनंदम हमेश आनंद, अव्यय का अर्थ है जिसका क्षय न हो वैसा आनंद, अथवा अविरत आनंद अर्थात हमेश अव्यय आनंद। वृंदावन में भगवान कैसा आनंद करते हैं? अव्यय आनंद, हमेश आनंद करते हैं, इसको बोलते हैं लीला। और वैकुंठ आदि तद अंश अंशम, वैकुंठ आदि धाम जो है भगवान के धाम के भी बहुत विस्तार है। वैकुंठ भगवान श्री कृष्ण के धाम का विस्तार है। तो ये वैकुंठ आदि भव वृंदावन के अंश अंशम है। तो वहां नित्यम सन्निहितो हरि, वहां भगवान रहते हैं, और भगवान वहां क्रियाएं करते हैं, वो खुद के आनंद के लिए और दूसरों को आनंद देने के लिए, इसको बोलते हैं लीला। तो ये लीला प्रकट लीला है और अप्रकट लीला है। और प्रकट लीला का अर्थ है वृंदावन में भव वृंदावन में जो लीला करते हैं भगवान, वो लीलाएं गोलोक वृंदावन लीला से लीला प्लस मच मोर इज इक्वल टू भव वृंदावन लीला। जैसे प्रकट लीला अप्रकट लीला स्वारस्य की लीला वगैरह कई लीलाओं का प्रकार है, लीलाओं का क्लासिफिकेशन, मंत्र रस की लीला। तो यह प्रकट लीलाएं जो है, प्रकट लीला में ब्रह्मांड में प्रपंच है और वहां राक्षस संहार है, लगता है प्रपंच जैसा, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश गंदगी वगैरह हमें लगता है कि भौतिक जगत की पैदाश है वृंदावन, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रपंच गोलोक वृंदावन में प्रपंच नहीं है, वहां दिव्य, और यहां राक्षसों का संहार भगवान करते हैं, वहां राक्षसों का संहार नहीं है, राक्षस है ही नहीं गोलोक वृंदावन में। यहां भगवान का जन्म होता है, जन्म लीला वहां है नहीं, भगवान 16 साल के नया यौवन भगवान वहां है, नव यौवन जन्म, शिशु नहीं है, शैशव नहीं है, पौंगड़ लीलाएं नहीं है, शैशव लीलाएं नहीं है, बालपन की लीलाएं नहीं है, वो उत्कल लीला या बछड़े चढ़ाने जाना वो लीला, उतना वध वहां नहीं है। यहाँ लीला का आदि मध्यम और लीला का अवसान है, भगवान जैसे कि भूम वृंदावन में अष्टकालीय लीला है, 8 प्रहर लीला भगवान की, 24 घंटा में 8 प्रहर है और 8 प्रहर में भगवान की अलग अलग लीलाएं हैं, नित्य लीला का वर्णन करें। सुबह वाली लीलाएं हैं भगवान की, कृष्ण की, तो उनका सेंटर योगपीठ, सुबह वाली लीला का योगपीठ है वृंदाकुंड, आपने देखा होगा वृंदाकुंड, नंदगांव के पीछे पूर्व पश्चिम में है, जो इस्कॉन का सुंदर मंदिर वहां बना है, तो वहां 2 कुंड है, एक वृंदाकुंड है, तो वो कुंड है, वो कुंड प्रातः काल की लीला का सेंटर है। जैसे कि प्रातः काल में लीला क्या है कि भगवान उठते हैं 3:30 बजे, बाद में सब कुछ दातुन वगैरह, और बाद में ना यू नो ब्रेकफास्ट, और बाद में गायों को निकालना, बाद में यू नो राधा रानी, यू नो गोपियाँ, ग्वाल मित्र, जसोदा नंद महाराज, सब सबके साथ इंटरेक्शन लीला है। ये लीला आप पढ़ो, गोपाल जीव गोस्वामी ने ये अष्टकालीय लीला, कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने अष्टकालीय लीला का पुस्तक लिखा है, तो सारा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भी अष्टकालीय लीला का वर्णन किया है। सुबह का सेंटर वृंदाकुंड है, दोपहर की लीला में आता है गोचारण और वाटर स्पॉटिंग इन राधा कुंड, श्यामा कुंड और मानसी गंगा, और ये राधा कुंड दोपहर की लीला का सेंटर है, उनको कहते हैं योग पीठ, वहाँ भगवान राधा रानी की लीला होती है। और यह सारा व्रज कमल जैसा है, जैसे कमल में शाम को कमल फैल जाता है और सुबह कमल बंद हो जाता है नंदगांव, और नंदगांव से विस्तार होता है, तो लीलाओं का विस्तार वृंदावन तक, गोवर्धन तक। तो दूसरा सेंटर है, मिड डे का सेंटर है, राधा कृष्ण और ग्वाल मित्र वगैरह सबके भगवान के साथ लीलाएं का सेंटर है राधा कुंड, गोचारण स्पॉटिंग एंड वाटर स्पॉटिंग, बोट स्पॉटिंग, झूला वगैरह, यानी इंटिकेट से लीला आप पढ़ो, ये मैंने पुस्तक बताए वो। और शाम का लीला का सेंटर है ये गोविंद देव जी का मंदिर वृंदावन में, सो वो मंदिर में साइड में योग पीठ, नीचे गर्भ में जहाँ से गोविंद देव प्रकट हुए, शाम के लीला का सेंटर, शाम में जो लीलाएं होती है भगवान की, जैसे कि गायों को वापस ले जाना और बाद में सफर, शाम का डिनर वगैरह, कई लीला है, तो ये वृंदावन में नित्य लीलाएं चलती रहती, नित्य सन्निहितो हरि, तो ये सब लीलाएं 8 प्रहर लीलाएं राधा कृष्ण, ग्वाल मित्र, जसोदामा, नंद महाराज और उनके अनंत पार्षद हैं वहाँ वृंदावन में, उनकी नित्य लीला। तो हमें क्यों नहीं दिखाई देता, क्योंकि हमें दिव्य चक्षु चाहिए, चैतन्य चरितामृत, चर्म चक्षु देखे तार प्रपंच रमय, दिव्य चक्षु देखे तार स्वरूप प्रकाश, गोप गोपी संगे कृष्ण करे विलास। तो चर्म चक्षु हमारे भौतिक चक्षु से देखेंगे तो गंदगी दिखाई देगी, और प्रपंच, प्रपंच रमय मतलब पृथ्वी जल तेज वायु आकाश दिखाई देगा, लेकिन दिव्य चक्षु से हम देखेंगे वृंदावन को तो स्वरूप प्रकाश, कृष्ण का स्वरूप प्रकाश, दिव्यता, सच्चिदानंद, दिव्य दृष्टि से हमें सब भगवान की लीला दृष्टि दिव्य दिखाई देगी, दिव्य वृंदावन। जैसे अकबर को जीव गोस्वामी ने दिव्य दृष्टि दी, वो अकबर बोलता है, अकबर कहता है जीव गोस्वामी को, वृंदावन में आया, वैष्णव था वो भी, बहुत अच्छा भक्त था अकबर, बोलता है मैं वृंदावन में क्या सेवा करूं, वृंदावन की क्या सेवा करूं, बड़ा मंदिर बना दूं, बड़ा ये कर दूं, क्या कर दूं, मैं राजा हूं, एम्परर। तो जीव गोस्वामी कुछ बोले नहीं कि आप वृंदावन में क्या सेवा कर सकते हो, बोलते नहीं मैं करना चाहते। तो वो कहते हैं ठीक है, केसी घाट में जो घाट है उनके लाल पत्थर की एक थोड़ी सी चिप टूटी हुई वहां पड़ी थी, तो बोलते हैं टूट गया है तो आप उनको रिपेयर, इनको संवार कर रिपेयर कर दो। तो दिव्य दृष्टि उनको दी तो वहां चिंतामणि का सार पत्थर और सब हीरा मोती माणिक उनको सब कुछ दिखाई देता। तो कहता है तो मेरा राज्य में बेच दूं फिर भी इन्हें काम नहीं हो सकता। तो ऐसी दिव्य दृष्टि से हम देखें वृंदावन की लीलाएं, तभी हमें स्वरूप प्रकाश, तभी हमें यथा रूप दिव्य ये लीलाएं, दिव्य धाम, चिंतामणि, भ्रूमि, कल्प वृक्षमय वन, चर्म चक्षु देखे तार प्रपंचे रमय, दिव्य चक्षु देखे तार स्वरूप प्रकाश, गोप गोपी संगे कृष्ण करे न विलास, कृष्ण करे लीला गोप गोपी संगे। तो ये हमें वृंदावन का भोम, वृंदावन हमें दिव्य दृष्टि से पता चलेगा नित्य लीलाएं, नहीं तर हम देख नहीं सकते। चल रहा है कहाँ है भगवान, कौन सा भगवान, लेकिन सद्गुरु स्वामी हर रोज हर पल राधा कृष्ण का दर्शन किया करते थे हर पल, और उसके मुताबिक उनने शास्त्र लिखे भक्ति रसामृत सिंधु। बड़ी बड़ी लीलाएं कथाएं हैं लीलाओं की, हर रोज 16 माला, कम से कम 16 माला करो तो ये लीलाएं और आनंद प्राप्ति और सुख, असीम सुख, अव्यय सुख, लेकिन हमें चाहिए नहीं ना, किसी को चाहिए नहीं ये चीज, क्योंकि हमें माला नहीं करनी है, सब कुछ चाहिए लेकिन मफत में, यू हैव टू पे प्राइस फॉर एवरी लिटिल थिंग, सो यू हैव टू पे प्राइस फॉर आनंद, यू हैव टू पे प्राइस फॉर लव कृष्ण। तो उनके लिए हमें कुछ नहीं, प्राइस पे नहीं करना, नो यू हैव टू डू 16 माला, 16 माला है तो माया से मुक्त, नहीं तो माया आपको पकड़ेगी और बिठाएंगी उनके गोदी में और आपको माया तारे झापुटिया दे रहे, राधि भाई मुख जी कृष्ण बोली जी, अतः वो माया तारे झापुटिया दे, माया मार मारेगी और मार मारेगी, और हम कहें वो अच्छा लगता है और मारो और अच्छा लगता है और मारो, पिटाई खाते रहेंगे इल्यूजन डार्कनेस। 16 माला अनिवार्य है अगर कोई सीरियस है आनंद की खोज है सुख की प्राप्ति करनी है, 16 माला अनिवार्य है, प्रभुपाद जी का नियम है। तो प्रेम की लिमिट क्या है, क्या होनी चाहिए, पहले तो यहां प्रेम भौतिक जगत में प्रेम की परिभाषा सब कोई 100% लोग 100% गलत करते हैं। यहां प्रेम का अर्थ है यू स्क्रैच माई बैक एंड आई स्क्रैच योर बैक, स्वार्थ बीच में है, यह प्रेम नहीं है, लस्ट है। भौतिक जगत में प्रेम है गोलोक वृंदावन, सत्य जगत, सत्य प्रेम, और प्रेम ही सत्य है, प्रेम ही भगवान है, प्रेम ही कृष्ण है, लेकिन वहां यू कृष्णा You do this to me and then I'll do. नहीं तत् सुखे सुखी, तो परिभाषक प्रेम का लक्षण तत् सुखे सुखित्वम तत् दुखे दुखित्वम इति प्रीति लक्षणम। उनके सुख में मेरी खुशी, उनके दुख में मैं दुखी, ये प्रेम का लक्षण है। और यह अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को पगार नहीं देता है तो दूसरे दिन में भी महीना, पांच महीने, छह महीने में प्रेम नहीं है वहां, ये प्रेम नहीं। यू स्क्रैच माय बैक, आई स्क्रैच यूर्स, स्वार्थ। प्रेम का अर्थ यहाँ क्या है, आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा दारे काम नाम। आप मेरी इंद्रियों की तृप्ति करो, मैं आपकी इंद्रियों की तृप्ति करता हूं, उनको बोलते हैं काम, लेकिन हम बोलते हैं प्रेम, वो प्रेम नहीं है। यह काम है, काम। प्रेम का अर्थ है मेरे लिए कुछ नहीं, मेरा सब कुछ आपके लिए। ऐसा कौन है, यहाँ कोई है? जैसे मैं फैक्ट्री में जाऊं और मालिक को कहूं मेरे लिए कुछ नहीं, सब कुछ आपके लिए, मैं 24 घंटा काम करूंगा लेकिन आपके लिए, ये प्रेम है। लेकिन आप पगार दो, ओवर टाइम दो, वन एंड हाफ, टू टाइम, थ्री टाइम्स पगार ऑन हॉलीडेज, तो प्रेम नहीं है। गर्लफ्रेंड कहे मैं शादी नहीं करूंगी, आप अभी से नहीं चाहिए, प्रेम टूट गया है ना, तुरंत गुस्सा आएगा प्रेमी को कि नहीं आएगा, प्रेमी को क्या आएगा, गुस्सा, वो किसी और से शादी कर ले, मैं आपसे नहीं करूंगी, मैं किसी और से करूंगी, क्या आएगा, प्रेम था तो गुस्सा कैसे, नहीं तू दूसरों से शादी कर, तू मेरी है, मैं आपसे प्राप्त बहुत प्रेम करता हूँ, मेरा सारा पगार आपको हर रोज देके जाऊंगा, मेरा घर देके जाऊंगा, मेरा शरीर आपके लिए, मेरा सब कुछ आपके लिए, आप दूसरे शादी कर लो। प्रेम कहाँ गया, कहाँ गया प्रेम, ऐसा कोई करता है तो क्या वो प्रेम है, क्या वो यू स्क्रैच माय बैक, आई स्क्रैच योर बैक। स्वार्थ को निकाल दो, मेरा स्वार्थ क्या है, तू मेरी प्रेमिका हमेशा रहे और मैं आपको एक्सप्लोइट करता रहूं, तो उन बीच में से मैं किसी और से शादी करूंगी, खत्म हो गया, सेटल, एवरीथिंग इज फिनिश्ड। लेकिन प्रभुपाद जी स्टोरी कहते हैं, एक्सट्रीम स्टोरी है, कि एक पत्नी थी, पति से और लेपर कुछ था, उनके सामने एक वेश्या रहती थी, तो पति चाहता था वेश्या सुंदर है, मैं उनको चाहता हूँ, मैं उनके साथ संग करना चाहता हूँ, और पत्नी और उनके पास पैसा है नहीं, पत्नी के पास पैसा नहीं और उनके पास पैसा नहीं है वेश्या को देने के लिए, क्या किया जाए, और हर रोज पति लॉन्गिंग, पति झंकना, मुझे वो वेश्या चाहिए, वेश्या चाहिए। तो पत्नी क्या करती है, वो वेश्या के घर काम करती है और वेश्या की टेल चाकरी करती है 24 घंटा, और वेश्या को, वेश्या बोलती है मैं क्या दूं आपको वेतन में, पगार क्या दूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पति की इच्छा है आपके साथ संग हो जाए। तो ये प्रेम है, पत्नी का पति की ओर प्रेम है कि मेरा पति खुश, मेरे पति को आनंद, मेरा पति मौज मेरा, मेरे पति को, तो ये पति एक प्रतिवर्ता जरूर है, और पति से डेडिकेट, पति से प्रेम करती है, पति की हर इच्छा की पूर्ति करना चाहती है। तो ये भौतिक जगत में प्रेम की बात छोड़ो, चाहे कुछ भी आप करो, हो सकता है अगर आप वो स्वार्थ निकाल दो तो प्रेम हो सकता है, लेकिन ज्यादातर यू स्क्रैच माय बैक, आई स्क्रैच योर बैक। ये भौतिक जगह में आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा धारे कामना, अपनी इंद्रियों की तुष्टि कोई करे उनको बोलते हैं काम, किसी की इंद्रियों की तृप्ति हम करें उनको बोलते हैं काम, और कृष्ण की इंद्रियों की तृप्ति हमारी इंद्रियों की तृप्ति नहीं, उसको धारे प्रेम नाम। कृष्ण इंद्रिय प्रीति वांछा धारे प्रेम नाम, वो प्रेम है। कृष्ण मार भी राख भी यो किच्छु, ये इच्छा तुम्हारे नित्य दास, मैं आपका नित्य दास हूं, चाहे आप मारो चाहे आप राखो चाहे आप भरण पोषण चाहे आप भूखे चाहे आप आश्लेष्यावा पादरताम विनष्टुमाम अदर्शनात् मरमहताम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपट लंपटो मत प्राणनाथस्तु सेव नापर। हे कृष्ण आप चाहे ये मुझे छोड़ के गर्लफ्रेंड के हिसाब से चैतन्य देव बोलते हैं गोपी भाव में राधा रानी के भाव में कि हे कृष्ण आप चाहे मुझे ठुकरा के दिल के टुकड़े टुकड़े कर दो, मुझे लात मारो, चाहे आप दूसरी के पास जाओ, चाहे जो भी करना है आप करो, फिर भी मेरे प्राण के नाथ सदैव आप हैं, सदैव रहोगे। मुझे ठुकरा दो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे प्राण के नाथ तो आप हो। तो ये प्रेम है, ये प्रेम है। तो भौतिक प्रेम की सीमा कितनी, जब तक वो आपकी इंद्रियों की तृप्ति करता रहे जो भी चीज, और जैसे इंद्रिय तृप्ति टूटी प्रेम टूट, सो कॉल प्रेम टूटा, सो कॉल प्रेम टूटा, ये सीमा है आपकी इंद्रियों की तृप्ति वर्धन, आपकी इंद्रियों की तृप्ति का आनंद का वर्धन होता जाए तब तक वो प्रेम की वो सीमा है, और जैसे वो टूटा प्रेम फिनिश्ड, सो इट इज अ लस्ट नॉट ए प्रेम। प्रेम का अर्थ है समर्पण, प्रेम का अर्थ है एवरीथिंग फॉर यू, नथिंग फॉर मी, यू कैन डू व्हाट एवर यू लाइक विथ मी बाय किकिंग मी बाय रिजेक्टिंग मी बाय, बट आई वॉन्ट टू कीप गिविंग हैप्पीनेस, आई वॉन्ट टू कीप गिविंग यू व्हाट एवर विद इन माई रीच, आई वॉन्ट टू कीप गिव यू एवरीथिंग फॉर यू, दैट इज प्रेम। हरे कृष्ण, श्री राधा कृष्ण चंद्र की।